दिया, दो चपत तो लगा दिए, किंतु उसको करुणा करके ये किया कि इस जन्म में कृष्ण से उसका संबंध हो जाए और उन लोगों का सहजी उद्धार हो जाए। इसलिए देवकी के गर्भ में दिया और कंस ने उनको मारा। इसके बाद में बलदेव प्रभु जी आए, मारने के बाद में तो वो चले गए जमलोक में। इधर में बलदेव जी आए, इसके बाद में कृष्ण आए। अब कृष्णचंद्र जी से उन्होंने प्रार्थना की जिसे हमारे बच्चों को ला दीजिए। कृष्ण गए और उनको ले आए, छोटे छोटे शिशु जिस रूप में मारा गया था वो मारे गए थे उसी रूप में ले आए और बात्सल्य से उनका हृदय द्रवित हो गया, दूध उनका शिशु आने लग गया। देवकी जी ने उन सबको अपनी गोदी में लिया और एक एक को जब ही अपना स्तन स्पर्श कराया दूध वो गया उनके मुख में, साथ ही साथ में उनका उद्धार होता गया। शरीर छोड़ करके अपने उस मरीची के लड़के के रूप में थे, उस रूप में वो होने लगे। क्यों हुआ? क्योंकि कृष्ण ने एक बार देवकी जी का स्तनपान किया था। कब किया था? बचपन में जब जन्म हुआ तो मैया ने देखा कि गोकुल में जाएगा, ये बतलाया गया था। बच्चा जाएगा बिना खाए पिए जाएगा, इसका गला सूख जाएगा, इसलिए गोदी में बैठा करके कृष्ण को वो थोड़ा सा स्पर्श अपना स्तन करा दिया था। इसके बाद में कृष्ण ने कभी भी देवकी के स्तन नहीं पान किए, इसलिए अब वही जूठा जो स्तन था वो जो ही एक एक मुख में देते हैं और त्यों ही अपना शरीर छोड़ करके और उनको उससे मुक्ति लाभ करके अब चले जा रहे हैं कहां? मरीची के पुत्र के रूप में। एक एक करते हुए छह का ऐसे हो गया। इसका हमारे शास्त्रकारों ने वर्णन किया है, श्रीमन शुभानंद ने बतलाया था कि भक्ति के कुछ स्तर होते हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती, और भक्ति का एक ऐसा स्तर है जहां पर पहुंचने पर भगवान मिल जाते हैं। आदौ श्रद्धा ततो साधु संग अथवा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति और प्रेम। प्रेम के बाद में भगवान मिलते हैं। श्रद्धा निष्ठा रुचि अनर्थ भले श्रद्धा साधु संग श्रद्धा निष्ठा अनर्थ निवृत्ति, इसके बाद में रुचि, इसके बाद में आसक्ति, इसके बाद में भाव और अंत में प्रेम होता है। प्रेम होने पर भगवान से दर्शन होता है। अब ये आठ हैं, आठ में से दो निकाल दिए, बाकी रह गए छह। साधु संघ के बिना श्रद्धा नहीं होगी, साधु संघ के बाद में श्रद्धा होती है। ठीक, पहले साधु संघ कैसे? अनजान में किसी प्रकार से उनको पानी दे दिया, उनका सत्कार आदर किया, ठाकुर जी को प्रतीक दिया, यहाँ पर हरि कथा सुनने के लिए आया, भागवत की पूजा कर दी, संतों को कुछ दे दिया जो भगवत नाम पारायण है, सुकृति से साधु संग, साधु संग से फिर अब प्रगाढ़ श्रद्धा हो, फिर गुरु करण होगा, इसके बाद में भजन क्रिया होगी, भजन क्रिया के बाद में अनर्थ दूर हो जाएगा, मैं ये शरीर हूँ, मैं ही शरीर ये हूँ, और संसार के प्रति आसक्ति दूर होने लग जाएगी, इसको अनर्थ निवृत्ति कर दे। जब ये सब दूर हो जाएगा तब आएगी रुचि, रुचि में अब परिश्रम नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, ये सब प्रमाद इत्यादि नहीं होगा, और रुचि के बाद में प्रगाढ़ आसक्ति होगी, आसक्ति के बाद में या शक्ति तक हुआ छ पुत्र, अब इसके बाद में भाव हुआ, ये हुआ बलदेव जी आए, और प्रेम में कृष्ण आठवें स्थान। इसलिए इन चीजों को बतलाने के लिए आठ पुत्र हैं, जिसमें अंतिम कृष्ण का जन्म है, उनका दर्शन है, भाव भक्ति होता है बलदेव प्रभु जी, और उसके पहले जो छ है यही स्वर्ग और भालू है। इसमें कंस कौन सा है, काल में भी भय, बिनु क्या, बिना भय के प्रीति नहीं होती, बिनु भय हो या न प्रीति, बिना भय के प्रीति नहीं होती। आदमी अपना कुसंस्कार दुर्गुण नहीं छोड़ेगा कैसे, बिना भय के डर के। आदमी कोई पाप से डरता है किस लिए, कहीं नरक न हो जाए, दुख भोगना पड़ेगा, माता पिता की सेवा करना चाहिए, माता पिता की जिन्होंने सेवा नहीं की उनको अनंत काल तक नर्क जाना पड़ेगा, ये बातें डर है, भय है। इन भयों से हम लोग इन दुर्गुणों से पापों से बचते हैं। तो कौन सा है भय, भय के मारे हम इन सब चीजों को छोड़ करके, और तब ये सब साधन भजन करते हैं, इसीलिए यहाँ पर छाव जो हैं, ये सब दुर्गुण, ये सब चीजें हैं, स्तर हैं भक्ति के, और ये सब होता है भय के कारण। यदि कंस नहीं होता, नहीं मारते उन लोगों को, और देवकी से संपर्क होकर के कृष्ण से संपर्क नहीं होता, तो इन लोगों का उद्धार नहीं होता, फिर भगवान को पाना पड़ा भारी मुश्किल। इसलिए ये सर्वगर भावों को कृष्ण ने के स्तनपान से उसका जूठा, थोड़ा सा जूठा मिल गया, और इसीलिए इनका उद्धार। इस तरह से देवकी अब बड़ी प्रसन्न हो, उनके पुत्रों का मंगल। इसके बाद में वो कौन सा, हाँ, एक दिन की बात है, द्वारका में बड़ा जोर से चारों तरफ में चर्चा चलने लगी। एक सिद्ध महापुरुष हमारे द्वारका में आया है, बड़ा सिद्ध, देखने में युवक तो है किंतु सिद्ध महापुरुष, जिसको जो कह देता वही हो जाता है, किसी से बोलता नहीं है, आंख नहीं खोलता, बस ध्यान में मग्न रहता है, देखने में भी बड़ा सुंदर सुकांत है किंतु सिद्ध महापुरुष है। किधर में कृष्ण की छोटी बहन बलदेव जी की छोटी बहन सुभद्रा जी आपकी शोरी लड़की हो गई, विवाह का उनका समय हो चुका है, हो आया। पिता माता चिंता कर रहे हैं जो इसकी शादी करनी है, वर ढूंढ रहा है, चारों तरफ में अच्छा योग्य, सुभद्रा के लिए तो साधारण वर से काम नहीं चलेगा ना, बहुत योग्य होना चाहिए, कृष्ण की बहन है, अच्छा कोई वर नहीं मिल रहा। बलदेव जी को, बलदेव जी ने सोचा हमारा शिष्य बड़ा सुंदर है और गदा युद्ध में भी पारंगत है, उसका नाम दुर्योधन है, बहुत ही कुरुवंश में एक बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसी के साथ में इसकी शादी करूंगा। बलदेव जी तो अब बड़े हो गए हैं ना, वसुदेव देवकी उग्रसेन अक्रूर और कृष्ण इत्यादि सबका विचार है कि किसी भक्त से, योग्य से लड़के से, यदि अर्जुन से इसकी शादी हो जाए तो बहुत अच्छी है, अर्जुन सब विषय में योग्य है, अर्जुनी है, सुंदर भी है, महात्मा भी है, इसलिए उसके शादी हो। किंतु बलदेव जी के डर के मारे कोई भी कुछ नहीं कर रहा, सब लोग शांत बैठे हैं, यदि बलदेव बिगड़ गया तो फिर मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कोई नहीं कह रहे। बलदेव प्रभु जी आदान प्रदान कर रहे हैं सब बीच में, ठीक था, बड़े उत्साह के साथ में सुभद्रा का विवाह उससे करने के लिए वागदान भी दे चुके हैं, ये इसकी शादी उसी से हम लोग करेंगे, और पिता माता से भी कह दिया इसकी शादी उसी से हो, पर इन लोगों ने हाँ भी नहीं कहा। उन्होंने सोचा जो मौनम सम्मति लक्षणम, हाँ ठीक है, मौन हुए तो ठीक है, कृष्ण ने सुन करके भी कुछ नहीं सुना, उनकी कुछ भीतर से इच्छा है। अब ये सिद्ध योगी की चर्चा चारों तरफ में चल रही है, सब लोगों ने सुभद्रा से कहा, घर की भाभियों ने कहा, भाभियाना ने सप्तभामा रुक्मिणी प्रभृति ने कहा, जो देखो ननद ये सिद्ध योगी आया है, तुम इसके पास में जाओ और उसको प्रसन्न करके तुम वर ले लो, जिसको तुम चाहेगी उसी से तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, और तो तुमको चलो हम लोग ले चलते हैं, सब लोग ले करके उसके पास में गए, ये प्रणाम नाम करके और मन ही मन में कुछ प्रार्थना कर रही है। इतने में देखा गया क्या, वो योगी जोगड़ा छोड़कर, अपने वस्त्रों को छोड़कर, हाथ में धनुष बाण लिए हुए एक रथ पर बैठ गया और इसको भी खींच करके बैठा दिया, जिस प्रकार से कृष्ण ने रुक्मिणी को बैठा दिया और लगाम इसके हाथों में दे दिया घोड़े को, और अपने धनुष बाण ले करके बैठ गए, यदि कोई आया तो हम देखेंगे। जो उन्होंने सुभद्रा जी ने रथ इंद्रप्रस्थ लिए हुआ हाथ दिया और चारों तरफ में हो हल्ला हो गया। अरे ये क्या हुआ, वो जोगी नहीं, वो तो अर्जुन है और उसको लेकर के चला जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इन जंतुवंशियों में आकर के कोई ऐसा काम किया हो। बलदेव जी को खबर लगी, होंठ फड़फड़ाने लगे, दांत कड़मड़ी होने लगी और रंग एकदम लाल हो गया। देखो तो इस सर्प को हमने पाला पूछा दूध दिया, अपनी मैत्री से इसे बढ़ाया और ये काल सर्प अपने को ही हम लोगों को ही दसने जा रहा है। हमारे कुल में धब्बा लग गया, हमारी लड़की को, हमारी बहन को हम लोगों के सामने से देखते हुए और लेकर के उड़ चल। और देखो तो बैनी रथ चला रही है और भी क्रोध हुआ। अजय ठीक है, फल मुसल लिए, चतुरंगड़ी सेना को हाँक दिया। अर्जुन के लिए चतुरंगड़ी सेना की जरूरत, मैं अकेले ही उसके लिए काफी हूँ। बस फल मुसल लेकर के बड़े वेग से जब दौड़ने लगे तो कृष्ण ने कहा कि भैया कहाँ जा रहा हो, कहाँ जा रहे हो? हाँ तो तुम जानता नहीं है, देख नहीं रहा, हमारी बहन को हम लोगों के सामने से इतने वीरों के बीच से हम और तुम और सब लोगों को अपमानित करता हुआ बहन को लेकर के चला जा रहा है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। ये तो क्षत्रियों का काम है, आपने रुक्मिणी हरण में आपने ऐसा नहीं किया। अरे कल की तो बात है, सांब के विवाह के समय में आप क्यों गए उसके यहाँ? सांब ने सांब को पकड़ लिया और युद्ध हुआ, उसमें खुद ही आप गए, कहा जो बहुत अच्छा हुआ आपने ऐसा कर। आपने उषा का विवाह कैसे, उषा का अनिरुद्ध जी का विवाह कैसे किया, प्रद्युम्न जी का विवाह कैसा किया? सब आप सबका ही लेंगे और आपका घर से कोई नहीं ले जाएगा, ये कौन सी बड़ी भारी बात है? तो उनका सिर झुक गया।
आप अर्जुन ने तो नहीं चिरा सुबह तो अर्जुन को हरण किया लोग चला गया।
और देखो तो अरे अर्जुन लेकर के भाग रहा है ना, भाग रही है तुम्हारी बहन, भाग रही है वही तो भगा रही है। तो इसका मतलब है जब पीछे से कोई बात गुप्पे चुप्पे हुई होगी और उससे बातचीत हुई होगी, इसलिए तुम्हारी बहन ने अर्जुन को बिगाड़ा। तो इसमें क्या बात है, ये क्षत्रियों का वीरों में ऐसा होता है? तुमने पहले क्यों नहीं कहा, ये भीतर से तुम सब लोगों की यही इच्छा है। पिताजी की भी देखते हैं कि वही कुछ नहीं बोल रहे, उग्रसेन महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, मैया कुछ नहीं बोल रही है, हमारी रोहिणी मैया नहीं बोल रही, भाभियां कुछ भी नहीं बोल रही। तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। ओ तुम सब लोगों का मिल करके ऐसा क्लीक है ये तुम लोग कर रहे, तो ठीक है, अच्छा जाओ उनको बुला लो। अच्छे तो कृष्ण गए अर्जुन को, उन्होंने पार्थ पार्थ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। तो फिर कृष्ण वो खड़े हो गए अर्जुन, फिर दोनों को ले आकर के फिर द्वारका में ही लाया गया और बड़े धूमधाम के साथ उनकी शादी। इस प्रकार की कथाएं हम लोगों ने अभी कुछ ये पाठ किए हैं, आगे भी सब कथाएं होंगी। बड़े मनोयोग के साथ में आज सुनेंगे, आज शाम तक कथा समाप्त होने वाली है, जो रह जाएगी वो कल सवेरे होगी और उसके बाद में हम लोग इसका पूजा करेंगे। आप लोग बड़े प्रेम के साथ में आगे की कथाएं श्रवण करें और एकादश स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। वो कृष्ण की ये जो भक्ति है जिसमें कि इंद्रद्युम्न महाराज जी चित्र क्या
अब ये
चित्रकेतु महाराज जी वृत्रासुर हुए हैं, प्रहलाद महाराज जी हुए हैं, उद्धव जी जैसे भक्त हुए हैं, गोपियां जैसी हुई हैं, इन लोगों ने कृष्ण को कैसे पाया? बद्ध जीवों के लिए एकादशम स्कंद में नहीं बतलाया गया, ऐसा प्रेम नहीं होने से नहीं होगा। ऐसा प्रेम कैसे होगा, उसका कर्म विकास क्या है उन पद्धतियों का, कैसे हम कृष्ण को प्रेम पूर्वक पा सकते हैं, उसकी पद्धति एकादश स्कंद में बढ़े। कुछ लीलाओं का रहस्य द्वादश स्कंद में भी बतलाया गया। इन सब चीज को धीरे धीरे हम लोग आज इसका वर्णन करेंगे। आप लोग भागवत के तह में जाने की चेष्टा करें और लोग जहां पर कृष्ण की कथाओं को अतिरंजित करके इधर उधर की कथाएं कहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप लोग शुद्ध रूप में श्रीमद् भागवत की कथाएं सुने और उसमें प्रवेश करके उन साधनों को अपना करके इस जीवन में सुखी रहे, संसार में रहे। जो जहां है स्थान स्थित जो जहां है उसी स्थान में रहे, किंतु भगवान का भजन करे। पांडव लोग भी तो गृहस्थ थे, यादव भी गृहस्थ थे, गोपियां भी गृहस्थ ही थी, सभी लोग तो गृहस्थ थे। मुस्लिमीय लोग त्यागी हैं, इसलिए त्यागी हो चाहे वैरागी हो चाहे गृहस्थ, भगवान का भजन करते हुए क्रमशः संसार से उपरत होइए। संसार में रहना का मतलब ये नहीं है कि आसक्त होकर के उसे जकड़े रहे, नहीं। जीवन निर्वाह के लिए संसार में है, ये विश्व ब्रह्मांड प्रभु का है, ऐसा समझ करके इन चीजों के साथ में भगवान की आराधना करें। और नहीं तो मकड़ी के जाल में फंस कर उसे कभी भी निकल नहीं सकते। इसलिए श्रीमद् भागवत को श्रवण करके कैसे साधन भजन है वैसा साधन भजन करके हम लोग इस संसार से उपरत होकर के भगवान के चरण कमलों को पा सके, इसलिए हम भागवत श्रवण कर रहे हैं। यश तो आप लोग आगे की कथा वंशा अब आगे एकादश और द्वादश चलेगा। जैसे शिकारी होता है, अभी रखो रखो इसमें, शिकारी अपना शिकार खोजता है। अभी पूरी जगन्नाथपुरी में मैं गया, वहां पर बहुत से शिवर हैं मल्ला, क्या कहते हैं निगुआ में क्या नलिया, उनको कहते हैं नलिया, उनका काम है मछली मारना। लाखों की संख्या है, तो जानते हैं कि किस तरफ में मछली मिलेगी, शिकार मिलेगा, उधर ही नौकाओं को लेकर के जाते हैं, समझते हैं। और भर भर करके नौकाओं में मछली मार करके ना जंगल में आया शिकार जाता है, शिकारी जाता है शिकार करने, तो जहाँ पर शिकार नहीं होगा वहाँ पर शिकार तो जाएगा नहीं, शिकार भी अपना शिकार खोजता है, जहाँ उसका शिकार मिलेगा वहीं पर जाता है। माया भी अपना शिकार खोजती है, माया शिकारी है, अपना शिकार खोजती है। लोगों को छलते बलते कैसे इस संसार में हम आसक्त करा रहे, विशेष करके वो देखते कि हमारा शिकार कहाँ मिलेगा, भगवान के की कथाएं जहाँ होती हैं वहां पर उसको शिकार मिलने की संभावना अधिक होती है। क्यों? वहां पर अधिक लोग जाएंगे, उसमें से बहुत से ऐसे मिलेंगे जो हरि कथा में सो जाएंगे, बस उनको हम शिकार कर लेंगे। तो यहाँ पर अधिकता से शिकार मिल सकता है, इसलिए माया वहां पर छद्म वेश में आकर के आंखों के ऊपर में बैठ जाती है और अपना शिकार कर लेती है आसानी से। किंतु भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, माया से मानो उस शिकार को शिकारी से बचा देते हैं। कैसे? भगवन नाम कीर्तन के द्वारा। बीच बीच में वो लोग कीर्तन करते हुए सबको जगा देते हैं, माया अपना शिकार नहीं पाती। जरा बांका बिहारी जी कोई सुंदर एक कीर्तन कीजिए तो, जैसे कि माया हम लोगों पर शिकार न कर ले। ये तो सुपर नहीं, ये तो इंद्र है। अजर इंद्र तू यहाँ क्या कर रहा है, चलो हम लोग चले, आ जाओ आ जाओ। तो उन्होंने कहा जे तुम शुकर है या तुम इंद्र है, वहां पर अमृत पान करता है, यहां पर क्यों सड़ा तला चीजों में रहता है। तो जे क्या मैं स्वर्ग का नहीं, मैं तो यही का हूं, चलो मेरे साथ में। मैं नहीं चलता, ये मेरी स्त्रियां हैं, ये मेरे बच्चे, उनको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। आज अच्छा एक एक बच्चे को लेकर के पकड़ करके हम मारना आरंभ किया। अब वो रोता हुआ और ब्रह्मा को मारने के लिए चले, किंतु वो आकाश मार्ग में स्थित है, कुछ कर नहीं पाते। अब चलेगा, तुम्हारे बच्चों को तो मैंने मार दिया, तुम अब चलेगा नहीं, हमारे बच्चे फिर हो जाएंगे। एक साथ में 16 बच्चे हमारे होते हैं, कुछ दिनों में ही हम मनुष्य को एक वर्ष में बच्चा एक होता है, नहीं भी होता है, और उनको वर्ष में 2-4 बार हो जाते हैं, और 16-20-25 बच्चे भी हो जाते हैं, हमारे बच्चे हो जाएं, तो बच्चों को सब समाप्त कर दिए। इसके बाद में उनकी पत्नी आ रही है, पत्नियों को भी मारना आरंभ किया। उन्होंने कहा ये कोई चिंता नहीं, फिर पत्नियां भी हमारी हो जाएंगी, अजय अभी तुम मानेगा नहीं। वह कमंडल उसे पानी प्रक्षण करके बैठ जाओ, प्रक्षण करके और ऊपर छोड़ दिया। छोड़ने के साथ ही साथ उन्होंने कहा अरे ये क्या, मैं तो इंद्र हूं, शुकर का रूप अब नहीं दिखाई पड़ा, मैं तो इंद्र हूं, मैं कहां स्वर्ग में कैसे अमृत इत्यादि का पान करता हूं, और कहां यहां गंदी गंदी चीजों में रहता हूं। उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, प्रभु अब इस जगत में नहीं रहना चाहते। प्रोक्षण किया, पुनः पानी देकर के अपने इंद्र स्वरूप में स्थित हो गए और उनके साथ में चले। इसी तरह से हम लोग अब तो बंद होना चाहिए, कथा में व्यथा तो आप खुल बैठे कथा सुननी चाहिए, बंद कर दो, कोई नहीं है। उसी तरह से हम यहाँ के हैं नहीं है, जितने भी जीव हैं, चाहे कीट पतंग, गधे, घोड़े, सुअर, पेड़ पौधे, लताएं, स्त्री पुरुष, चाहे वो क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जो कोई मुसलमान कोई भी हो, वो सब बैकुंठ के हम लोग, वो लोग वृंदावन से आए हैं, भगवान को भूल करके आए हैं, और जब तक वहां पर नहीं हम पहुंचेंगे सुख नहीं हो सकता, प्रभु की सेवा में ही सुख है। इसी को उपाख्यान इत्यादि के द्वारा बतलाया, भगवान का भजन यदि नहीं करता है वो प्राणी बहुत, उसका जन्म ही व्यर्थ गया। उसमें भी कृष्ण का यदि भजन नहीं हुआ, अब विशेष करके ब्रज में रहने वाले लोग, किसी प्रकार से इनका जन्म हुआ या विवाहित होकर के यहाँ है या जैसे भी इस ब्रज में है, यदि कृष्ण का भजन नहीं करते विशेष करके राधा जी के साथ में कृष्ण का भजन नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है। इसलिए हम लोगों को भजन करना चाहिए। चार युगों में उन्होंने बतलाया कि कैसे कैसे भगवान का कैसे कैसे भजन होता है, कौन कौन से युग में कैसे उनका भजन किया जाता है, ये आगे बढ़ते। अभी तो उन्होंने ये बतलाया वैष्णव कौन है, उत्तम भागवत कौन है। विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति नष्ट हो जाने पर भी जिसको तनिक भी खेद नहीं होता, और विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति मिलने से उनको इतना भी आनंद नहीं होता, तनिक मात्र अंश मात्र भी, ऐसे लोग वैष्णव जिनका चित्त सब समय भगवान में लगा रहे, कभी भगवान का दर्शन नहीं करते कभी रोते हैं, कभी भगवान का दर्शन पाते हैं हंसने लगते हैं, कभी आनंद में नित्य करने लगते हैं, कभी सब शुद्ध भूत शरीर का छोड़ करके एकदम चुपचाप होकर के फिर पृथ्वी में लोट पोट करते हैं। ऐसे महाभागवत लोग जगत में कम दिखते हैं, होने से भी हमें तो नहीं दिखेंगे, जिनका इतना सौभाग्य है और भक्ति है वो तो देख लेंगे, हम लोगों के सामने वो नहीं, देख करके हम समझेंगे ये पागल है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था बचपन में, हाई स्कूल में, एक दिन मैंने देखा जब मेरी छुट्टी हो गई शाम के समय में 6 बजे देखा, एक देखा केवल लंगोटी पहने, उम्र होगी 50-60 वर्ष की, और वो गलियों में राधे 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 करता है और लोट पोट कर रहा है। उस समय समझते तो कुछ समझता तो था नहीं, आंखों से आंसुओं की धारा गिर रही, वो दृश्य आज तक मैं भूल नहीं सका। यदि आज की स्थिति में होता ना तो उस महापुरुष का चरण बंदन कर उनकी धूली अपने अंगों में लगा देता और जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ता। वैसे आदमी समझ नहीं पाते हैं, ऐसे महापुरुष जगत में विचरण करते हैं, कमी नहीं है ऐसे महात्माओं की, किंतु उनको चिन्हना पहचानना बड़ा भारी कठिन है। ऐसे महात्माओं का लक्षण क्यों होता है, विश्व महान्य की विपत्ति आ जाने पर भी तनिक भी उनको क्लेश नहीं होता, और आनंद होने पर भी जागतिक आनंद मिले तो उनको तनिक भी नहीं, वो तो एकदम भगवान के चरणों में रख रहते हैं। ऐसे महापुरुष लोग वैष्णव, ये पद भी सहज नहीं है, ये मुक्त होने पर भी ऐसे होती है, इनका लक्षण सब बतलाया है। अभी आगे वर्णन में आएगा, चार युग होते हैं और चार युगों में भगवान की आराधना चार प्रकार से होती है। इसमें भगवान भी जो युगावतार होते हैं चार प्रकार के होते हैं, सत्ययुग में शुक्ल, शुक्ल माने सफेद हंस जैसे, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम, और कलयुग में पीत वर्ण के, इन चारों का वर्णन करेंगे। उस समय लोग सत्ययुग में ध्यान के द्वारा उनकी आराधना करेंगे, मंत्र रहेगा नारायण परा वेदा नारायण परा अक्षर इत्यादि, नारायण परो वासुदेव, उनकी आराधना। उस समय के प्रधान ऋषि नर नारायण है और वामन इत्यादि जो है अवतार ये सब उनके विविध प्रकार के नाम होंगे। त्रेता युग में रामचंद्र जी को वर्णन नहीं किया, राम कृष्ण ये सब लोग युगावतार नहीं है, किंतु जब आते हैं तो युगावतार उनमें प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए साधारण रूप में बतलाया कि वो लाल रंग के होंगे, रक्त वर्ण, उनका नाम भी होगा रक्त, और यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना। इसलिए त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा उनकी आराधना। उस वहां का मंत्र भी है कोई, इसके बाद में द्वापर युग, द्वापर युग में कृष्ण कैसे आएंगे, श्याम वर्ण के, ये कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, काले नहीं श्याम वर्ण, और अपने सुंदर पीत कौशीय वस्त्र वंशी इत्यादि द्वारा रहेंगे सुशोभित होंगे, और लोग अर्चन के मार्ग द्वारा उनकी आराधना करें। अब कलयुग का है, बस कलयुग में कहते हैं जैसे सतयुग में शुक्ल मुक्ति का जन्म हुआ, आविर्भाव हुआ, त्रेता में रक्तवर्ण का आविर्भाव हुआ, और द्वापर में जैसे श्याम वर्ण का, और उनका नाम भी श्याम, ये श्याम अवतीर्ण में कब, द्वापर के अंत में। अब उसमें जितने युवा बता हैं उस समय के उस सब में प्रवेश हो, उनकी आराधना होगी अर्चन के माध्यम से। इसके बाद उन्होंने पूछा जो कलयुग का क्या होगा, तो कलयुग के लिए उन्होंने बताया, कलयुग के लिए बताया कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णो सांगा सांगा सपार्षदम जब कई संकीर्तन पराय जजन में ही सुमेर स। कलयुग के लिए, अब कलयुग में जो अवतार है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी उपासना कैसे होगी, तो वो कलयुग में उनको अवतार होगा होना होगा। त्रेता युग वाले जो रामचंद्र जी हैं वो कलि के में अवतार उनका नहीं हुआ है, इसलिए उनका यहाँ पर आराधना की बात नहीं। श्याम वर्ण जो है वो द्वापर युग में अवतरित हुए हैं, उनका श्याम नाम है, और उनकी लीलाएं भी श्याम है, वो कलयुग में उन्होंने आदिर्भाव उनका जन्म नहीं प्रकट नहीं हुआ, इसलिए कलयुग के लिए उपास्य नहीं कौन है, इसके लिए बतलाया कृष्ण वर्णन तिशा कृष्ण। सत्य में जो कृष्ण 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 वर्णन करते हैं, अथवा जिनके नाम के पहले कृष्ण नाम है, कृष्ण चैतन्य, इसलिए पहला नाम है कृष्ण, सत्य में कृष्ण कृष्ण वर्णन करते हैं, और उनके नाम का पहला जो अंश है वो भी कृष्ण है, कृष्ण चैतन्य जिनका नाम है। तिशा कृष्ण जिनके अंग का रंग कैसा है, अकृष्ण अर्थात पीत वर्ण, क्यों ये पीत वर्ण हुआ उसका भी कारण उन्होंने दिखलाया, पीत वर्ण है, और सांगास्त्र पार्षदम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम, सौ अंग अंग भी है उपांग भी है, अस्त्र है और पार्षद है, इनको ले करके आए हुए हैं। यदि कहें जो कृष्ण ही आए हैं तो कृष्ण हुए अंग, उनका उपांग कौन होगा, उनका अस्त्र क्या होगा, कलयुग में आए नहीं इसलिए उनको छोड़ दीजिए, ये कल जी की उपासना। यदि नाम को कहो तो उनमें लगाना पड़ेगा लक्ष्मण इत्यादि उपांग है, अस्त्र उनका धनुष बाण है, किंतु ये भी है। और उनकी उपासना होगी त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, और श्याम की होगी आसन से होगी, किंतु कलयुग का ये होगा नहीं, इसलिए कलयुग में ये अर्थ नहीं आएगा। वहां पर होगा सौ अंग उपांग, अंग माने स्वयं कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही स्वयं राधा जी के भाव को लेकर के गौ रूप में प्रकटित हुए, सब समय कृष्ण कृष्ण करते हैं। उनकी अंग कैसी है? राधा जी की काम, जैसे राधा जी पीठ है ऐसे वो पूजा है, क्योंकि वही लेकर के आए हैं। और उनके साथ में उपांग कौन है? नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैता। अस्त्र क्या है? हरि नाम अस्त्र है। इसी अस्त्र के द्वारा किसी जीव को नहीं मारा, समस्त जीवों का